आचार्य श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी जी महाराज द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के ध्यानदीप नामक नवम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के 77वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर चुके थे। 77वें श्लोक में उपासना का ज्ञान की अपेक्षा वैलक्षण्य दिखाया जा रहा है। पहले 74वें श्लोक में ज्ञान और उपासना इन दोनों में एक एक वैलक्षण्य बता चुके हैं। ज्ञान वस्तुतंत्र है और उपासना पुरुष तंत्र है। इसे पहले 74वें श्लोक में बताया, तो इन दोनों का आपस में ये भेद हुआ। एक ज्ञान वस्तुतंत्र है, एक पुरुष तंत्र है। और भी ज्ञान और उपासना का भेद समझ में आ जाए, इसलिए ज्ञान और उपासना में भेद दिखाया जा रहा है, वैलक्षण्य दिखाया जा रहा है। तो 75 और 76 इन दो श्लोकों में बोध में वैलक्षण्य बताया, जो बोध में ही रहेगा उपासना में नहीं रहेगा, ऐसा विशेष धर्म वह उपासना का ज्ञान में वैलक्षण्य माना जाएगा। तो साधन जो बोध का है वो विचार बताया, विचारा जायते बोध इत्यादि से। तो उपासना का साधन विचार नहीं है और ज्ञान का साधन विचार है, तो ये साधनतः वैलक्षण्य होगा। और अनिच्छा जो है प्रमाता की, प्रमारूप बोध को रोक नहीं सकती, तो प्रमाता के अनिच्छा से जो न रुके वो बोध, उपासना को तो बताया जाएगा कि वो यदि उपासक की उपासना करने की इच्छा न हो तो रुक जाती है, लेकिन प्रमाता को यदि प्रमाण और प्रमेय का संसर्ग हो गया और निर्दोष है प्रमाण भी और प्रमेय भी, तो ज्ञान होगा ही होगा। प्रमाता ये सोचे कि ज्ञान रुके तो रुक नहीं सकता, वह धनुष से निकले हुए बाण के तरह है। प्रमाता की धनुष से निकला हुआ बाण लक्ष्य के प्रति, बाद में ज्ञात हो जाए कि यह लक्ष्य जो है दूसरा कोई है जिसे हम नहीं मारना चाहते थे, वेदना नहीं चाहते थे वो है, लेकिन छूट गया तो लक्ष्य का वेदन वो करेगा, भले ही आप जिसका वेदन नहीं करना चाहते थे उसका। ऐसे निर्दोष प्रमाण और निर्दोष प्रमेय का यदि संबंध हो गया और आपकी इच्छा हुई कि ये ज्ञान रुके, तो आपकी इच्छा से रुकने वाला नहीं है। ये कहा कि अनिच्छा यमन निवारयेत, और ज्ञान का फल बताते हुए कहा गया कि वो अपनी उत्पत्ति मात्र से ही अध्यस्त जो अनात्मा संसार है उसमें सत्यता को बाधित कर देता है, हटा देता है सत्यत्व बुद्धि। ये ज्ञान की विशेषताएं हैं, जो ज्ञान की विशेषताएं हैं वो ज्ञान का उपासना की अपेक्षा वैलक्षण्य माना जाएगा। ऐसे 76वें श्लोक में ये कहा कि ये जो संसार को बाधित करने वाला ज्ञान है, ज्ञाता को कृतकृत्य बना देता है, कुछ भी फिर उसका करना बाकी नहीं रहता, वो कृतार्थ हो जाता है ज्ञान मात्र से ही। तावता का अर्थ है ज्ञान की उत्पत्ति मात्र से ही। ज्ञाता यानी अविद्या को, संसार को बाधित करने वाला ज्ञान उत्पन्न हुआ, उतने मात्र से ही कृतार्थ हो गया ज्ञाता। और उसे नित्य तृप्ति यानी शाश्वत सुख प्राप्त होगा, उपागत यानी शाश्वत सुख को प्राप्त होगा। जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्ति का अनुभव करते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा करेगा, प्रारब्ध क्षय की प्रतीक्षा करेगा। ये ज्ञान का फल बताया। साधन है विचार, अनिच्छा से न रुकने वाला ज्ञान है, और उसका फल संसार का बाध, कृतकृत्यता, नित्य सुख की उपलब्धि, जीवन मुक्ति और अदृष्ट फल विधेय मुक्ति, ये बताया गया। अब उपासना का ज्ञान की अपेक्षा वैलक्षण्य दिखाया जा रहा है 77वें श्लोक से लेकर के, इसमें भी बताया जाएगा 78वें श्लोक में भी। तो उपासना का साधन तो है श्रद्धा, और किस पर श्रद्धा, तो वेद तथा वेदार्थ बोधक आचार्य के वचन में, जो एक विश्वास श्रद्धा। और वो श्रद्धा से होता क्या है, फिर वेद के विषय में संशय विपर्य नहीं होता, प्रमाण विषय संशय विपर्य श्रद्धा होने नहीं देती। प्रमाण विषयक संशय और विपर्य भी एक दोष माना गया है ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक। ये दोष श्रद्धा में न्यूनता के कारण आता है, और जिसके अंदर श्रद्धातिरेक है का मतलब उत्कृष्ट श्रद्धा है वेद के प्रति, वेदार्थ बताने वाले आचार्य के वचन के प्रति, उसे वेद वचनों के प्रति संशय या भ्रांति नहीं होती, विपर्य नहीं होता। इसलिए ये दो प्रतिबंधों से रहित चित्त होने से इन पर विश्वास करके वेदार्थ जो आचार्य ने बताया उस पर विश्वास करके वैसा ही बिना विचार किए उसका आवर्तन करता है वेदार्थ का। वो आवर्तन हुआ उपासना। इसलिए कहते हैं कि अन्य प्रत्यय अनंतरित वृत्ति भी ही चिंतित, चिंतन करेगा किसका, आचार्य के द्वारा उपदिष्ट वेदार्थ का। आचार्य के द्वारा उपदिष्ट वेद वाक्य है तत्वमसि, और उसका अर्थ है ब्रह्मात्म एकत्व। इसका मनन किए बिना और बहुत विचार किए बिना आचार्य ने कह दिया कि तुम ब्रह्मरूप हो, और श्रद्धातिरेक है, इसमें कोई संशय नहीं हुआ, तो मनन करने की जरूरत नहीं। केवल पूर्व जन्म के जो विपरीत संस्कार है वो बुद्धि में पहले से आए हुए, अशुभ संस्कार, विपरीत भावना जिसे कहा जाता है, उसके कारण साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। श्रद्धा ये विश्वास तो करा रही कि मैं ब्रह्म रूप ही हूं, लेकिन साक्षात्कार नहीं हो रहा है। साक्षात्कार में प्रतिबंधक होगी विपरीत भावना। विपरीत भावना है, पहले अनात्मा शरीर आदि का जो मैं के रूप में अनुभव किया और उस अनुभव से चित्त में पड़े हुए देहादि के आत्मरूप से संस्कार, इन्हें कहा जाता है अशुभ संस्कार विपरीत भावना। और ये यदि प्रबल रहेंगे तो साक्षात्कार रुकेगा, श्रद्धा होने पर भी साक्षात्कार नहीं हो पाएगा जब तक विपरीत भावना नहीं जाएगी। इसके लिए जरूरी है फिर निधिध्यासन। विपरीत भावना की निवृत्ति निधिध्यासन से होती है, अशुभ संस्कार का निवर्तक निधिध्यासन है। निधिध्यासन कैसे अशुभ संस्कार को दूर करेगा, तो बताया शुभ संस्कार का हेतु उसे। निधिध्यासन होता है जो तत्वमसी वाक्यार्थ आचार्य ने समझाया है उसी वाक्यार्थाकार चित्तवृत्तियों का आवर्तन, विपरीत चित्तवृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित। विपरीत चित्तवृत्तियां बनेगी विपरीत भावना से, तो वो यही प्रयत्न करता रहेगा, उसका एक ही प्रयत्न रहेगा क्या कि विपरीत भावना उसकी अहम वृत्ति को ले जाना चाहती है अपने विषय अनात्मा शरीरादि को विषय बनाने के लिए, लेकिन वह अपनी अहम वृत्ति को विपरीत भावना जो अपहरण करना चाहती है इसका अहम वृत्ति का, उससे बचाएगा बॉडीगार्ड बन करके अहम वृत्ति का, उसके लिए प्रयत्नशील रहेगा सावधान रहेगा। और अहम वृत्ति बिना आलम्बन के रहेगी नहीं, और विपरीत भावना अहम वृत्ति को जो आलम्बन दिलाना चाहती है शरीर आदि को पंचकोष को, उसके ओर ये जाने नहीं देगा। तो फिर आचार्य ने वेद ने जो हमारा स्वरूप बताया है उसी स्वरूप को अपनी अहम वृत्ति का आलम्बन बनाने का प्रयास करेगा। ये प्रयत्न पूर्वक अहम वृत्ति का आलम्बन ब्रह्म को बना रहा है। तो प्रयत्न से अहम वृत्ति ब्रह्माकार बन रही है, तो पुरुष प्रयत्नाधीन हो गई ना। पहले कहा था पुरुष तंत्र है, इसलिए उपासना होगी, ये अनुष्ठेय हो गई, इसको निर्गुण की उपासना कहा जाएगा। ये निर्गुण की उपासना हो रही है। तो ये कहा कि चिंतित प्रत्ययरण्य अनंतरित वृत्ति भी, तो अनात्माकार चित्त वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित ब्रह्माकार वृत्तियों का आवर्तन करता रहे, ये चिंतन है। ये उपासना का वैलक्षण्य हुआ साधनतः आपके बोध की अपेक्षा। बोध का तो साधन था विवेक, यहां विवेक के बिना केवल श्रद्धा, ये उपासना का साधन है। हाँ, वो मानस प्रयत्न होगा। और ये जो है कहा कि अब अनात्माकार चित्तवृत्तियों से रहित आत्माकार चित्तवृत्ति का आवर्तन करना है, लेकिन इसका भी कोई निश्चित समय होगा ना, कब तक करना है वो बताया जा रहा है। तो पहले प्रश्न करते हैं 78वें श्लोक के अवतरण के रूप में कि कियंतम कालम चिंतयेत इति आशंक्य आह। कियंतम का अर्थ है काल का विशेषण, कितने समय तक, कियंतम कालम चिंतयेत का मतलब ब्रह्माकार अहम वृत्ति का आवर्तन करे। कोई समयावधि इसकी, तो समयावधि बता रहे हैं कि भोजन कब तक करना है, भूख की निवृत्ति हो और तृप्ति आ जाए तब तक भोजन करना है। चाहे वो एक फुलका खाने से हो जाए या दस फुलके खाने से हो जाए, क्षुधा की निवृत्ति और तृप्ति तब तक भोजन करना है। ये नहीं कि कभी ज्यादा भूख लगी है तब भी दो ही फुलके खा ले, कभी ज्यादा भूख नहीं है तब भी दो ही फुलके खा ले। न खाने से भी चल सकता था, एक फुलका खाने से भी पर्याप्त होता, लेकिन नियम बना लिया दो ही खाने हैं तो ज्यादा अपच हो जाएगा और उधर वो भूखा ही रहेगा, दो ही फुलके खाएगा। जिस दिन ज्यादा भूख है उस दिन दस फुलके खाने से निवृत्त होने वाली क्षुधा दो फुलके से कहां निवृत्त होगी। इसलिए ये यहां पर भी ऐसा ही है, एक निश्चित ये बता रहे हैं कि जो फल है उपासना का, उसके प्राप्त होने तक उपासना करनी है। ये अहंग्रह उपासना है ना, और अहंग्रह उपासना का फल माना जाता है जिसकी आप अहंग्रह उपासना कर रहे हैं वह आपके अहम वृत्ति का सहज आलंबन बन जाए, उतना सहज जितना सहज ये शरीर मैं के रूप में भासता है, आलंबन बनता है। शरीर को मैं हूं ऐसा अहम वृत्ति का आलंबन बनाने के लिए कोई प्रयत्न करना पड़ता है, अनायास ही बिना प्रयत्न के ही। जैसे शरीर आपकी अहम वृत्ति का आलंबन बन रहा है, ऐसे जिसकी आप अहंग्रह उपासना कर रहे हैं वह इतना सहज आपकी अहम वृत्ति का आलंबन बने तब तक आपको अहंग्रह उपासना करनी है। ये उपासना का समय बताया, तब तक कर ले। वो एक दिन में उपासना करने से ही यदि हो जाए ब्रह्म अनायास आपकी अहम वृत्ति का आलंबन, तो फिर दूसरे दिन उपासना करने की जरूरत नहीं है। एक रविवार को छुट्टी ऐसी होती है तो वो छुट्टी का समय जितने दूसरे काम के लिए लगाते हैं तो इस काम में लगा दिया, उतने से ही यदि बन गया आपकी अहम वृत्ति का आलंबन ब्रह्म तो दूसरे दिन उपासना की जरूरत नहीं है, उसको टिकाए रखना है फिर तो। और नहीं तो एक जन्म दो जन्म जब तक नहीं होता, जितने जन्म बीत जा उपासना करते करते वो उतना सहज हो जाए तब तक करना है। ये यहां पर 78वें श्लोक में समय अवधि बता रहे हैं ब्रह्म की अहंग्रह उपासना करने की समय अवधि दिखा रहे हैं विद्यारण्य स्वामी जी। तो 78वें श्लोक का उच्चारण कर लें। यावत् चिन्त्य स्वरूपत्वा भीमानः स्वस्य जायते तावद् विचिन्त्य पश्चाच्च तथैवामृति धारयेत्। तो यावत् स्वस्य चिंत्य स्वरूपत्वाभिमानः जायते तावत् विचिंत्य, फिर आमृति तथैव धारयेत्, ऐसा अन्वय करना। इसका अर्थ होता है कि यावत् यानी जितने समय तक चिंतन करने से स्वरूपत्वाभिमान स्वस्य जायते, तो आपका अभिमान आपके चिंतनीय ब्रह्म में हो जाए, यही मैं हूं। ऐसा आपकी अहम वृत्ति अपने उदय के साथ साथ पंचकोशों को कहो या तीनों शरीरों को कहो, अपना आलंबन बनाना छोड़ रही है और ब्रह्म को ही, आपके चिंतनीय को ही अपनी आलंबन बना रही है, अपना सहज अहम वृत्ति। तो माना जाता है आपका स्वरूपत्व अभिमान ब्रह्म में हुआ। तो तावत चिंतयेत, तब तक वो ब्रह्म का मैं के रूप में चिंतन करना है, जब तक सहज अहम वृत्ति ब्रह्म को आलंबन न करें। ये कब होगा? जब तक बुद्धि में विपरीत भावना यानी अनात्मा देहादि का आत्मरूप से संस्कार कारक रूप में रहेगा ना। कारक कहते हैं प्रेरक को, कुछ कार्य करने में सक्षम रहेगा। संस्कार होता है, आपको प्रेरणा देता रहता है उसके विषय को प्राप्त करने के लिए, प्रयत्न करवाता है आपसे वो स्वभाव। इसलिए वो स्वभाव से नियुक्त होकर के गीता में भगवान ने कहा ना कि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। प्रकृति है वो स्वभाव ही, और स्वभाव का ही नाम है संस्कार। वो संस्कार दो प्रकार का, एक शुभ एक अशुभ। तो ये अशुभ संस्कार जो विपरीत भावना है, अनात्मा देहादि का आत्मरूप से संस्कार, ये आपकी अहम वृत्ति का जब तक अपहरक के रूप में अपनी उपस्थिति आपके अंतकरण में दिखाता रहता है, अपना अस्तित्व दिखाता है, तब तक तो आपकी अहम वृत्ति अनायास आपके चिंतनीय ब्रह्म को आलंबन नहीं करेगी अपने स्वरूप के रूप में, मैं के रूप में। उसे आपको अकारक स्थिति में पहुंचाना पड़ेगा, का मतलब लकवाग्रस्त करना पड़ेगा। जैसे शरीर का कोई अंग होता है, हस्त पैर आदि, जब तक लकवाग्रस्त नहीं होता तो उनका जो काम है वो करते रहते हैं, और यदि हाथ में लकवा हो गया तो हाथ तो दिखेगा वैसा का वैसा ही, लेकिन ये रखा हुआ चश्मा हाथ से उठा करके पहन नहीं पाएगा लकवाग्रस्त होने से। तो ऐसे आपके अंतकरणस्थ अशुभ संस्कार अकारक भाव में पहुंच गए, लकवाग्रस्त हाथ हुआ तो अकारक भाव में पहुंच गया, वो अपना कार्य करने में सक्षम नहीं रहा। हाथ का कार्य होता है कोई वस्तु उठाना, जहां आप रखना चाहते हैं वहां रखना, वो नहीं कर पा रहा हाथ, तो कारक स्थिति में नहीं है। ऐसे कारक स्थिति में अशुभ संस्कार नहीं रहेंगे तो फिर उस समय आपकी अहम वृत्ति चिंतनीय ब्रह्म को ही सहज आलंबन करेगी और उनको अकारक स्थिति में पहुंचाता है। बलवान के सामने दुर्बल सिर नहीं उठाता ना, वो चुपचाप बैठा रहता है। तो विरोधी बलवान हो तो शांत बैठेगा, शुभ संस्कार अकारक भाव में रहेगा, और अशुभ संस्कार का विरोधी है शुभ संस्कार। तो शुभ संस्कार को पुष्ट करता है, बलवान करता है ये निधि ध्यासन उपासना। तो आपकी उपासना से आपके चित्त में जो अशुभ संस्कार है उससे भी बलवान, उसे सिर उठाने लायक न करने वाला शुभ संस्कार बलवान हो जाए, इतना प्रबल हो जाए, उसे प्रबल करती है उपासना, और तब जाकर के वो अकारक स्थिति में पहुंचता है। कौन? अशुभ संस्कार। अशुभ संस्कार अकारक स्थिति में पहुंचेगा, माना जाता है वो लकवाग्रस्त जैसा हो गया, और फिर शुभ संस्कार आपकी अहम वृत्ति का प्रेरक बनेगा, और शुभ संस्कार का आलंबन है, विषय है ब्रह्म ही, तो आपकी अहम वृत्ति को सीधा एक प्रकार से राजमार्ग मिल जाएगा। केवल अहम वृत्ति के लिए ही बनाया हुआ रोड, दूसरी कोई गाड़ी आ नहीं रही है, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसी आपकी अमृति सीधा जैसा उपनिषदों ने आपका स्वरूप बताया उसी को आलंबन करेगी, वो आपके अहम वृत्ति का रास्ता साफ करने का काम करता है शुभ संस्कार। और अवरोध उपस्थित करने वाला है जगह जगह अशुभ संस्कार, उसको आपके रास्ते में आने ही नहीं देगा, तो सीधी अहम वृत्ति ब्रह्म को ही आलंबन करती रहेगी, उसी में आपका अभिमान स्थिर हो जाएगा। तो ये बताया, यावत चिंत्य स्वरूपत्वाभिमान स्वस्य जायते, स्व शब्द से लेना उपासक को, तो उपासक का जो चिंत्य यानी उपास्य, चिंत्य शब्द का अर्थ है उपास्य, चिंतन का विषय, उपासना का विषय, वो है ब्रह्म, और उसी चिंत्य स्वरूप में यानी ब्रह्म स्वरूप में मैं के रूप में अभिमान हो जाए अच्छी तरह से दृढ़, तावत विचिंत्य, तब तक प्रयत्नपूर्वक उपासना करनी है। अशुभ संस्कार से बहुत ज्यादा बलवान शुभ संस्कार को बनाना है, और वो बनता है उपासना से। अब आपका शुभ संस्कार बलवान बन गया तो फिर क्या करना है? कहते हैं तथैव आमृति धारयेत, फिर आपको अपनी अहम वृत्ति को ब्रह्म विषयक बना करके ही मृत्यु पर्यंत वैसा ही रखना है। ये नहीं कि फिर छोड़ दिया बीच में, तो अभी ज्ञान नहीं है ना, बाधित तो हुआ नहीं है, तो फिर आप अपने शुभ संस्कार को आहार नहीं देंगे तो धीरे धीरे दुर्बल हो जाएगा। शुभ संस्कार का दुर्बल होना है लकवाग्रस्त अशुभ संस्कार की मालिश होना, वो मालिश हो रही है उसकी, तो वो फिर मालिश से जो है लकवा रहित हो जाएगा, फिर कारक हो जाएगा। इसके लिए कहा कि तथैव आमृति धारयेत, तो मृत्यु पर्यंत उपासक को अपनी चित्तवृत्ति को वैसा ही बना करके रखना पड़ता है, इसी निश्चय के साथ रहना होता है। ज्ञानी को तो वो कभी ओझल होता ही नहीं उसके दृष्टि से, क्योंकि बाधित हुआ है संसार, अब ये ज्ञान नहीं है ना, बिल्कुल ज्ञान के जैसी ही निधिध्यासन में वृत्ति बनी है, लेकिन ये प्रयत्न से बनी है, ये अनुष्ठेय है, इसलिए इसको तो संभाल करके रखना पड़ता है, बाड़ लगा करके रखना पड़ता है, नहीं तो आकर के जंगली जानवर आपकी फसल को खा करके साफ कर देंगे। तो ये हमेशा मृत्यु पर्यंत जीवन पर्यंत मैं ब्रह्म हूं इस निश्चय को धारण करके रखना, ये बाड़ बना करके रखना है। तो ये कहा आमृति का मतलब मृत्यु पर्यंत, तथैव धारयेत। अब अहंग्रह उपासना करने वाले की उपासना का परिपाक हुआ, ये कब माना गया? उपास्य में अहम अभिमान स्थिर हो गया तो माना गया उपासना परिपक्व हो गई। इसका उदाहरण बताया जा रहा है छांदोग्य उपनिषद में, एक संवर्ग विद्या आती है। संवर्ग विद्या है प्राण उपासना, एक प्राण का संवर्ग नाम है। संवर्ग कहते हैं संवर्जन करने वाले को, संवर्जन करने वाले का मतलब विलीन करने वाले को, अपने में जो विलीन करता है उसे संवर्ग कहते हैं। तो प्राण विलीन कर लेता है आपके चक्षु को, आपकी वाक को, आपके मन को, आपके श्रोत्रेन्द्रिय को। ये कहा जाता है न कि जब जागृत अवस्था से आप सुसुप्ति में पहुंचते हैं तो उस समय ये बाह्य इंद्रियों का व्यापार नहीं होता, और उस समय जो सब व्यापार होगा माना जाता है उसने जागृत अवस्था में जो सब व्यापार थे उसे आत्मसात कर लिया, निगल लिया। तो जैसे आप जो औषधि गोली आदि होती है ना जो खाते हैं टैबलेट, पत्ते में जब तक है पत्ते से निकाल करके हाथ में रखी है तो इदम के रूप में दिख रही है, मुंह में डाल करके थोड़ा सा एक घूंट पानी पी लिया तो निगल लिया, तो निगल लिया का अर्थ हुआ आत्मसात कर लिया। वो फिर आपसे अलग नहीं दिखेगी, मुंह में डालने से पहले तक यह के रूप में दिख रही थी, अब मैं के रूप में हो गई, आपके आत्मसात हो गई, आपने उसको निगल लिया। इसे निगलने वाले को कहा जाता है संवर्ग। तो उस समय सुसुप्ति अवस्था में जो हो सब व्यापार प्रतीत होगा, माना जाएगा वह निगलने वाला है, और जो जो उस समय प्रतीत नहीं हो रहा है उसको उसने निगल लिया, आत्मसात कर लिया। तो सुसुप्ति के समय आपकी वाग इंद्रिय, आपकी चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, मन, ये सब व्यापार प्रतीत नहीं होते, इसलिए माना जाता है कि इनको प्राण ने निगल लिया, आत्मसात कर लिया, और वही उस समय दिख रहा है, सब व्यापार है, श्वासोश्वास चल रहा है, व्यापारवान होता है। जैसे वेष्टि में होता है ऐसे समष्टि में जो प्राण है वह इन वागादि के अधिदैव, जो अधिष्ठात्री देवता है ना, अग्नि, आदित्य, दिशा और चंद्रमा, इनको निगल लेता है, इनको निगल लेता, इनको खा लेता है। तो इसलिए उन्हें कहा जाता है संवर्ग, किसको? समष्टि प्राण और वेष्टि प्राण को संवर्ग कहते हैं। और इन दोनों का एकीकरण करके एक उपासना बताई है कि उपासक अपने अन्नमय कोष से अपनी अहम वृत्ति को हटा दे तो प्राणमय में पहुंच जाएगी, और प्राणमय में भी पहुंची हुई अपनी अहम वृत्ति को वेष्टि प्राणमय में ही न रख करके जो समष्टि प्राण है सूत्रात्मा, इन चारों देवताओं को अपने में समाहित करने वाला, आत्मसात करने वाला, उसकी अहंग्र उपासना करें, उसे मैं के रूप में ग्रहण करें समष्टि प्राण को, तो वो हो जाती है संवर्ग उपासना, वो भी अहंग्र उपासना है। वहां उपास्य समष्टि प्राण है और यहां उपास्य पंचदशी में बताया जा रहा है निर्गुण ब्रह्म को, निरुपाधिक ब्रह्म को। उपास्य में अंतर है लेकिन उदाहरण एक जैसा है, इसलिए उदाहरण बताया जा रहा है कि अहंग्रह उपासना तब तक करनी होती है जब तक उपास्य का स्वरूप को हमारी अहमृति अनायास आलंबन बना ले, उसमें अभिमान कर लें, तब तक करनी है। इसके उदाहरण स्वरूप यहां पर बताया जा रहा है संवर्ग उपासना का, एक उपासक ब्रह्मचारी है। उपनिषदों ने जैसा संवर्गत्व गुण से विशिष्ट प्राण का स्वरूप बताया, वैसा उपनिषदों से पहले उसने समझ लिया और फिर उस संवर्गत्व गुण से विशिष्ट प्राण की मैं के रूप में उपासना की, अहंग्र उपासना की, और उसकी उपासना का परिपाक हुआ। इसका मतलब समष्टि प्राण में उसका अहम अभिमान सुस्थिर हो गया, जम गया वहां पर। और फिर एक बार भिक्षा करने के लिए वह प्राण उपासक ब्रह्मचारी राजा अभिप्रतारी नाम के एक राजा है, उनके पास गया भिक्षा करने के लिए। तो वहां उनके द्वार पर पहुंचा, उस समय भोजन का समय तो हो ही गया था, अभिप्रतारी और दूसरे राजा लोग भी उनके पास आए हुए थे, एक ऋषि भी आए हुए थे, वे भोजन के लिए बैठे हुए थे और थाली वगैरह लगी थी, परोसना शुरू होना था। जाकर के ब्रह्मचारी ने भिक्षांदेही करके कहा, नारायण हरि किया, लेकिन राजा अभिप्रतारी ने जो परोस रहे थे उनको ये नहीं कहा कि पहले उस ब्रह्मचारी को भिक्षा दो फिर हम लोगों को परोसना, वो परोसना जारी रहा। ब्रह्मचारी ने ये किया, प्रतीक्षा की थोड़े देर और वो परोसना शुरू ही रहा इनका। फिर उसने ये कहा कि हे अभिप्रतारिन, अभिप्रतारी राजा को संबोधित करके कि देखो जिसके लिए अन्न पकता है भोजनशाला पाकशाला में, भोजन किसके लिए बनाया जाता है, भूखे के लिए। अब भूखा कौन है, भोजन करना भूख और प्यास ये धर्म माना जाता है प्राण का, इसलिए भूखे के लिए भोजन बनता है यानी प्राण के लिए भोजन बनता है। अरे अभिप्रतारी प्राण उपासक था ना, और प्राण में इसका आत्माभिमान है इसलिए वो मान लेता है, और समष्टि प्राण में उसका आत्माभिमान है, समष्टि प्राण का तो सारा भोजन उसी का है, उसी के लिए पकाया जा रहा है, तो उसमें आत्माभिमान करके कह रहा है अपने प्राणात्म भाव को प्रकट करते हुए कि जिसके लिए भोजन पक रहा है उसे नहीं दिया। एक महात्मा है और उसने चार देवताओं को निगल लिया, ऐसा एक वहां श्लोक आता है, और उसको जाने बिना ही लोग उसको भोजन कराए बिना ही करते हैं, वे अज्ञानी हैं। वो चार महात्मा हैं, ये चार देवता जो पहले बताए अग्नियादि, उन चारों देवताओं को उसने निगल लिया का मतलब प्राण ने निगल लिया, प्राण ही उनका आत्मसात करने वाला है। और वो प्राण मैं हूं, ऐसा उनका आत्माभिमान है। और वो कोई गलत अभिमान नहीं है, गर्व नहीं है, गर्व अलग है। और वास्तविक ही उस प्राण की उपासना करके उसमें उन्होंने आत्माभिमान कर लिया था ब्रह्मचारी ने। तो ये भोजन का अधिकारी तो मैं हूं और मुझे दिए बिना ही आप लोग शुरू कर रहे हो भोजन। लेकिन वहां के जो ऋषि थे, राजा थे, वो भी उपासक थे, उन्होंने भी राजा या ब्रह्मचारी को अपनी प्राण रूपता का ज्ञापक वचन बोला। तो ये संवाद दोनों का जो हुआ वह ये ज्ञापन करता है कि आंग्रह उपासना का परिपाक तब माना जाता है जब उपास्य के स्वरूप में उपासक का अहम अभिमान अच्छी तरह से दृढ़ हो, स्थिर हो, तो उपासना का परिपाक माना जाता है। तब तक उपासना करनी होती है। इसके लिए ये 79वें श्लोक में उदाहरण बताया जा रहा है। तो टीका में 79वें श्लोक का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। उपासकस्य तद्रूपत्वाभिमानम् उदाहरण प्रदर्शनेन स्पष्टीकरोति। उपासक का तद्रूपत्वाभिमान, इसमें तत् शब्द से लेना चिंत्य को, उपास्य को। तो उपासक का उपास्य रूप में अभिमान होता है उपासना का परिपाक माना जाता है। इसे उदाहरण के उदाहरण को बता करके स्पष्ट करते हैं विद्यारण्य स्वामी जी। स्पष्टी करोति इस क्रियापद के कर्ता माने जाएंगे विद्यारण्य स्वामी जी, 79वें श्लोक में ऐसा बता रहे हैं। तो 79वें श्लोक का उच्चारण कर लें। ब्रह्मचारी भिक्षमाणो यूतः संवर्ग विद्यया संवर्ग रूपता चित्ते धारयित्वा यभिक्षयेत भिक्षत। धारयित्वा यभिक्षत, तो संवर्ग विद्यया यूतः भिक्षमानः ब्रह्मचारी। तो संवर्ग विद्या है संवर्ग उपासना, संवर्ग तुगुण से विशिष्ट समष्टि प्राण की अहंग्र उपासना, वो संवर्ग विद्या कहलाती है। विद्या का अर्थ है उपासना। और उस संवर्ग नामक समष्टि प्राण की अहंग्र उपासना से युत यानी युक्त, उपासना रूप साधन से युक्त है वो। और उस उपासना रूप साधन का परिपाक हुआ है, इसे दिखाने के लिए कहते हैं कि चित्ते संवर्ग रूपता, या रूपता में अनुस्वार होना चाहिए, अनुस्वार छूट गया है। संवर्ग रूपताम धारयित्वा, चित्ते संवर्ग रूपताम धारयित्वा, ऐसा है। आपके पुस्तक में अनुस्वार है क्या? वो होना चाहिए। तो चित्ते संवर्ग रूपताम धारयित्वा, हाँ। तो संवर्ग उपासक एक ब्रह्मचारी है, उसकी उपासना का परिपाक हुआ और उपासना परिपक्व ही इसका द्योतक है। उपास्य जो संवर्ग है उसको अपना स्वरूप समझ रहा है, चित्त में उसने संवर्ग रूपता को धारण कर लिया है। तो धारण करके फिर भिक्षा प्राप्त करने के लिए चला गया राजा अभिप्रतारी के पास। तो ये कहा कि अभिक्षत। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। कश्चित संवर्गत्व गुण विशिष्ट प्राण उपासक ब्रह्मचारी, कश्चित का अर्थ है कोई एक, संवर्गत्व गुण से विशिष्ट प्राण की उपासना करने वाला ब्रह्मचारी भिक्षा आहरणार्थम आगत्य, भिक्षा प्राप्त करने के लिए अभिप्रतारी के यहां आया। तो अभिप्रतारी नामनो राज्य पुरतः, राजा के पास आकर के देखा कि आते ही मुझे तो भिक्षा नहीं दी जा रही है, जो भोजन करने के लिए बैठे उन्हीं को परोसा जा रहा है, उस समय ये वाक्य बोलता है। पुरतः महात्मनः चतुरो देव एकः स जागार भुवनस्य गोपा तम कापेय नाभिपश्यन्ति मर्त्या अभिप्रतारिन बहुधा वसन्तम् इति मन्त्रेणः स्वात्मन संवर्ग रूपत्वं चित्ते धृतं प्रगटीकृतवान्। ये छांदो के उपनिषद में सुना गया। ये मंत्र उसने कापे नाम के ऋषि भी वहां भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं और अभिप्रतारी नाम के राजा भी बैठे हैं, उनके सामने ये मंत्र बोला। ये मंत्र है ब्रह्मचारी के संवर्ग रूपत्व को प्रकट करने वाला। कहा कि चार महात्माओं को एक ऐसा देव है उसने जगार, गृह निगरणे धातु है, का मतलब निगल लिया, जगार का अर्थ होता है निगलने का अर्थ है जैसे गोली निगलते हैं हम लोग, ऐसे चार महात्माओं को निगल लिया। और जिसने निगल लिया वो देव कौन है, तो कहते भुवनस्य गोपा, ये संसार का भुवन है संसार, उसका गोपा है यानी पालयिता है, रक्षक है, प्राण से ही ये जगत तो टिका हुआ है ना, प्राण ने ही सारे जगत को धारण करके रखा है, इसे प्राण को कहा जाता है भुवन का गोपा पालयिता, गोपा शब्द का अर्थ है पालयिता। और तम कापेय नाभिपश्यन्ति मर्त्या, हे कापेय, ऐसा कापेय ऋषि का संबोधन करके ब्रह्मचारी कह रहा है कि हे कापेय जी, तम यानी उस देवता को, चार महात्माओं को निगलने वाले और संसार के संरक्षक एक देव को मनुष्य नहीं जानते हैं, हे अभिप्रतारिन, ये भी संबोधन है राजा का और कापेय उस ऋषि का। और वो देवता कैसा है, तो कहते हैं बहुधा वसंतम, वह समष्टि प्राण अनेक रूप धारण करके मनुष्यादि के रूप में अवस्थित है, मनुष्य शरीर में आता है तो मनुष्य के रूप में भासता है, पक्षी के शरीर में जाता है तो पक्षी के रूप में भासता है। वहां पर बताया गया मच्छर के शरीर में जाता है तो मच्छर के रूप में भासता है, और यही व्यापक है सारे शरीरों के अंदर प्रविष्ट होकर के तत्तद रूपों में भासता है, इसलिए उसे कहा जाता है बहुधा वसंतम। उसे नहीं जानते हैं, और वो यदि जानते तो वो तो मैं ही हूं, क्योंकि उसका अभिमान उस प्राण में है, तो मुझे पहले भिक्षा देते। लेकिन कापे और अभिप्रतारी भी उपासक हैं, उसको बताया कि हम लोग तो जानते हैं वो प्राण है और तुम प्राण उपासक हो, और फिर आज्ञा दे दी वहां परोसने वालों को कि इनको ब्रह्मचारी को भिक्षा दे दो, फिर जाने दो, ऐसा वहां संवाद आता है। का मतलब अहंग्रह उपासना की जाती है, उपास्य स्वरूप में अहम अभिमान की अच्छी स्थिति होने तक, और फिर मृत्यु पर्यंत उसी अभिमान को धारण किया जाता है, रखा जाता है, ये यहां पर बताना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही।